आसमां के तारे जितने हैं अरमां हमारे उतने, चलो चलो कुछ कर दिखलाए, पंख लगे हैं अब उड़ जाए, आओ कुछ बन जाए। ऊंचाइयों को ललकारे, छूले छूले आसमां, ना तो तेज हवाओं का डर हो, अपना हो सारा जहां।
प्यारी नीलम, मैं यहाँ अच्छी हूँ। मुझे शहर में एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई है। पता है, यहाँ के लोग मेरी अंग्रेज़ी की बहुत तारीफ करते हैं। ये बात तो है कि व्यस्तता थोड़ी बढ़ गई है, पर सीखने को बहुत मिल रहा है। अलग अलग देशों के लोगों से बात करके मैं अपना ज्ञान बढ़ा रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। ज़रूर लिखकर बताना कि जीनी से तुमने और कौन कौन से व्यवसायों के बारे में जानकारी हासिल की।
तुम्हारी कविता दीदी।
नीलम, ये कब हुआ? कविता दीदी जीनी से कब मिली?
मिली थी उस दिन जिस दिन तुम जीनी से मिलने नहीं आ पाए थे। अब तो मेरी भी इच्छा हो रही है कॉल सेंटर के बारे में और जानने की।
तो ठीक है, जीनी के पास चलते हैं।
मैं सब जानता हूँ। कविता दीदी का खत आया और तुम मेरे पास चले आए। बोलो, कॉल सेंटर के बारे में क्या जानना चाहते हो?
जीनी, पहले तो ये बताओ कि कॉल सेंटर होता क्या है?
इतना भी नहीं मालूम राहुल, वहाँ ढेर सारे फोन बेचे जाते हैं।
नहीं, ऐसा नहीं है कि कॉल सेंटर में फोन बेचे जाते हैं। कॉल सेंटर्स तो ऐसी जगह है जहाँ से लोगों को कॉल किया जाता है या लोगों के कॉल का जवाब दिया जाता है।
मतलब मैं कुछ समझा नहीं।
समझाता हूँ। जरा सोचो, जब घर का फ्रिज खराब हो जाता है या मोबाइल फोन में दिक्कत आती है या गाड़ी खराब हो जाए, तो आजकल हम मदद के लिए तुरंत एक खास नंबर पर कॉल करते हैं। वहाँ से जानकारी भी मिल जाती है और समस्या का हल भी निकल आता है। इन्हीं केंद्रों को कॉल सेंटर कहते हैं।
अच्छा, पर जीनी, क्या ये सिर्फ उनके लिए है जिन्हें अच्छी तरह अंग्रेजी आती है? क्योंकि कविता दीदी तो गांव में अकेली लड़की थी जिन्हें अंग्रेजी आती थी।
ऐसा बिल्कुल नहीं है।
तो फिर हमें इस विकल्प के बारे में और बताओ ना जीनी।
बताता हूँ, पर इससे पहले दूसरे बच्चों से भी उनके सवाल पूछ लेते हैं।
मुमकिन है क्या, क्या नहीं, कि हमें अभी पता नहीं, तो फिर पूछे चीनी से, पूछो 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 चीनी से पूछो। मुमकिन है क्या, क्या नहीं, ये हमें अभी पता नहीं, तो फिर पूछे चीनी से, पूछो 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 चीनी से पूछो।
पहले मैं पूछूंगी।
मुझे चीनी से कुछ कहना है।
क्या कॉल सेंटर में सिर्फ रात को ही काम किया जाता है?
क्या कॉल सेंटर में नौकरी पाने के लिए शहर जाना जरूरी है?
कॉल सेंटर में नौकरी पाने के लिए क्या योग्यता होती है?
क्या कॉल सेंटर में काम करने के लिए किसी विशिष्ट प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है?
कॉल सेंटर में शुरुआत में कितनी सैलरी मिलती है और उसमें तरक्की की कितनी गुंजाइश है?
कॉल सेंटर में काम करते समय किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?
बाप रे बाप, इतने सारे सवालों का जवाब कौन देगा?
मुझे लगता है इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें एक कॉल सेंटर के मैनेजर मिस्टर कमल वर्मा से मिलना चाहिए। तो फिर चलें।
वो चौराहे पे मिले जब हमें पांचवी कोई रात, सोचो हो नई दिन हो एक नया हो नया अपना नजरिया।
कमल जी, क्या हाल है?
अरे जीनी, बहुत बढ़िया, बहुत दिनों बाद आए हैं आप, कैसे हैं?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ कमल जी। मैं अकेला नहीं आया, मेरे दोस्त नीलम और राहुल भी आपसे मिलने आए हैं।
अरे वाह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
दरअसल कॉल सेंटर के बारे में हमारे कुछ सवाल थे।
अरे जरूर, बेझिझक पूछिए।
कमल जी, आखिर ये कॉल सेंटर होता क्या है?
कॉल सेंटर एक ऐसी जगह है जहाँ ग्राहक कॉल करके अपनी सेवाओं की जानकारी हासिल करते हैं। आपको मैं और डिटेल में बताऊं तो कॉल सेंटर की दो विधाएं होती हैं, एक होती है वॉइस, एक होती है नॉन वॉइस। वॉइस कॉल सेंटर में आप नॉर्मली फ़ोन करके अपनी जानकारी प्राप्त करते हैं, जबकि नॉन वॉइस कॉल सेंटर के अंदर ईमेल के ज़रिए आप अपने प्रश्न भेजते हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर कॉल सेंटर के कर्मचारी ईमेल के द्वारा ही दिया करते हैं।
तो कॉल सेंटर में नौकरी पाने के लिए कम से कम कितनी योग्यता होनी चाहिए?
योग्यता के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो ये अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ ज़्यादातर BA की डिग्री या ग्रेजुएशन को प्राथमिकता देती हैं, मगर कुछ कंपनियाँ ऐसी भी हैं जो 12वीं पास छात्रों को अवसर प्रदान करती हैं। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 12वीं पास छात्रों को वो ये ज़रूर प्रोत्साहित करती हैं कि वो आगे अपनी ग्रेजुएशन या BA की डिग्री हासिल करें, क्योंकि बिना BA की डिग्री के आगे तरक्की के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं।
इसके लिए क्या किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है?
देखिए, प्रशिक्षण का जहाँ तक सवाल है, इस जॉब को करने के लिए प्रशिक्षण तो बहुत सारा चाहिए होता है। आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट संस्थाएं ऐसी खुल गई हैं जो कॉल सेंटर की जॉब के लिए आपको प्रशिक्षण देती हैं। अगर आपने वो प्रशिक्षण पहले से प्राप्त किया है तो वो डेफिनेटली आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। मगर मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा, कोई कंपनी अगर आपको कॉल सेंटर की नौकरी के लिए नियुक्त करती है तो वो अपने कार्य के हिसाब से आपको ट्रेनिंग देती है, प्रशिक्षण देती है।
अगर किसी व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा की पूरी जानकारी ना हो तब भी क्या वो कॉल सेंटर में काम कर सकता है?
देखिए, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान तो ज़रूरी है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से कुछ क्षेत्रीय कॉल सेंटर भी शुरू हो गए हैं जो क्षेत्रीय ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं। इन कॉल सेंटर्स में कॉल करने वाले ग्राहक ज़्यादातर क्षेत्रीय होते हैं और वो अंग्रेजी के स्थान पर अपनी क्षेत्रीय भाषा या हिंदी में बातचीत करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे छात्र जिनको अंग्रेजी भाषा की पूरी जानकारी नहीं है वो इन क्षेत्रीय कॉल सेंटर्स में ज़रूर कोशिश कर सकते हैं, परंतु इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये क्षेत्रीय कॉल सेंटर ही आपकी डेस्टिनी या आपकी मंजिल नहीं है। आपको ये बात ज़रूर दिमाग में रखनी है कि आप साथ के साथ अपनी अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को बढ़ाएं, क्योंकि अगर आपको जीवन में तरक्की चाहिए तो आपको एक बड़ी कंपनी, बड़े कॉल सेंटर में नौकरी का अवसर मिलना ज़रूरी है, और वो तभी होगा जब आपकी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अच्छा है। वहाँ आपको तरक्की के मौके ज़्यादा मिलते हैं।
इस क्षेत्र में काम करने पर किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं?
ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुझसे। देखिए, चुनौतियाँ हर क्षेत्र में आती हैं, आप कोई भी काम करेंगे चुनौतियाँ हर जगह होंगी। कॉल सेंटर की नौकरी में भी अपनी प्रकार की चुनौतियाँ होती हैं। उनमें से अगर कुछ मैं आपको बताना चाहूँ तो रात या दिन की शिफ्ट एक तरह की चुनौती है, क्योंकि ये कॉल सेंटर दुनिया के दूसरे भागों में, जहाँ हमारे देश और उनके देश के बीच में 8 से 10 घंटे का फर्क होता है, उनको सेवाएँ प्रदान करते हैं। दूसरी बात, आपको बैक टू बैक कॉल्स लेनी पड़ती हैं। अगर आप 8 से 9 घंटे की शिफ्ट करते हैं तो 8 से 9 घंटे की शिफ्ट में आप कई बार 100 से 125 या 150 कॉल भी लेते हैं। उन 150 कॉल को कॉल करने वाले 150 अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। कोई आपसे बहुत अच्छी तरह बात करता है, कोई आपकी सेवाओं से असंतुष्ट होकर कंप्लेंट करता है, शिकायत करता है, तो जाहिर सी बात है वो आपसे नाराज़ होगा, और वो गुस्सा क्योंकि आप कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर अपना गुस्सा निकालता है। इन चुनौतियों को अगर आप लड़ लेते हैं, मेरे हिसाब से आप एक सक्सेसफुल कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं।
कमल जी, कॉल सेंटर से जुड़कर लोग किस तरह के भविष्य की कल्पना कर सकते हैं?
देखिए, कॉल सेंटर का जो क्षेत्र है, पिछले 7 से 8 सालों में इसने कमाल की तरक्की करी है, और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले वर्षों में भी इसमें और तरक्की की संभावनाएं हैं। आप शुरू में एक कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव या कॉल सेंटर एजेंट के या एसोसिएट के पद पर लिए जाते हैं, इसी के साथ साथ अगर आप उनके साथ काम करते जाते हैं तो आप 5 से 6 वर्षों में एक टीम लीडर की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह आप नए नए आयामों को, नए नए पदों को प्राप्त करते जाते हैं। असल में एक करियर के हिसाब से इसको लाइफ में ले सकते हैं।
जो छात्र इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, क्या आप उन्हें कोई सलाह देना चाहेंगे?
देखिए, मेरी सलाह यही है कि अगर आपने सोच लिया है कि आप कॉल सेंटर के एक क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से अगर आप कार्य करते हैं तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। मगर इसके साथ साथ मैं आपको ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप एक कॉल सेंटर के साथ जुड़ने के बाद, एक कंपनी के साथ जुड़ने के बाद, अब वहाँ कुछ समय ज़रूर बिताएं, क्योंकि अगर आप साल भर बाद, दो साल बाद किसी अच्छे कॉल सेंटर में अगर आप नौकरी करने जाएंगे और आपके बायोडाटा के अंदर अगर वो देखेंगे कि आपने 3 से 4 महीने में नौकरी छोड़ी है, तो वो यही अनुमान लगाएंगे कि आप शायद उनके यहाँ भी 3 से 4 महीने में नौकरी छोड़ जाएंगे। ये ना तो आपके लिए अच्छा है और ना ही उस कंपनी के लिए अच्छा है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कहीं कंपनी में काम करें, कम से कम 1 से 2 साल, शुरुआत में कम से कम 1 से 2 साल आप ज़रूर वहाँ बिताएं, तभी आपको ज्ञान के हिसाब से और प्रशिक्षण के हिसाब से ज़्यादा फायदा होगा।
कमल जी, आपने तो हमारी और हमारे सारे दोस्तों की समस्या हल कर दी, जिसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
तो कक्षा में बैठे बाकी बच्चों, उम्मीद है कि आपको कॉल सेंटर के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होगी।
जीनी, क्या वाकई कॉल सेंटर का प्रशिक्षण लेने के बाद जीवन बदल जाता है? क्या सच में इस प्रशिक्षण को करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है?
दरअसल नीलम, सिर्फ प्रशिक्षण लेने से जीवन नहीं बदलता, बल्कि कोई भी व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो आत्मनिर्भरता व्यक्ति को प्राप्त होती है, उससे जीवन बदलता है। आओ, अब मैं तुम्हें ऐसे ही एक और व्यक्ति से मिलवाता हूँ जिसने कॉल सेंटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर खुद को कामयाब बनाया।
छुपी थी अब तक पहचान तुम्हारी, आज देखेंगे दुनिया सारी। अब मेरी बारी।
राहुल, नीलम, इनसे मिलो। ये है तन्वी दीदी, जो पिछले 2 सालों से BPO सेक्टर यानी कॉल सेंटर में काम कर रही हैं।
नमस्ते दीदी।
नमस्ते
दीदी। आपने कॉल सेंटर में काम करने का क्यों सोचा?
मैं 2008 में दिल्ली आई थी और मुझे नौकरी की तलाश थी, तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि BPO सेक्टर काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, हर साल उसे एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तभी मुझे विचार आया कि मैं BPO इंडस्ट्री में नौकरी कर लूँ।
दीदी, कॉल सेंटर्स में नौकरी पाने के लिए आपने जो व्यवसायिक कोर्स किया, क्या वो काफ़ी था?
जो कोर्स मैंने किया BPO सेक्टर में प्रवेश करने के लिए काफ़ी था। मैंने 2 महीने का कोर्स किया जिसे कहते हैं कॉल सेंटर ट्रेनिंग, जिसपे ये सिखाया जाता है ग्राहकों से फ़ोन पे बात करना, चीज़ों को फ़ोन पे बेचना और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग आदि। नौकरी से जुड़ने के बाद मुझे और भी ट्रेनिंग दी गई ताकि मैं अपना काम बेहतर से कर पाऊँ।
जैसे मेरी अंग्रेजी कच्ची है, तो क्या मैं कॉल सेंटर में काम करने का ख्वाब देख सकता हूँ?
राहुल, ऐसी बात नहीं है, तुम भी BPO सेक्टर ज्वाइन कर सकते हो। BPO सेक्टर में ऐसे कई काम होते हैं जो सिर्फ टेलीफोन पे नहीं होता, कंप्यूटर्स में भी होते हैं, जिसे कहते हैं बैक ऑफिस जॉब्स। और राहुल, अगर आप अपने इंग्लिश सुधारना चाहते हो तो ऐसे काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जिसपे इंग्लिश सिखाए जाते हैं, और वैसे भी आजकल ऐसे काफ़ी BPOs है जहाँ आप हिंदी में भी और अपने मातृभाषा में भी बात कर सकते हो।
वैसे दीदी, इस नौकरी को करके आप अपने आप को आज से 10 साल बाद कहाँ देखते हो?
जब मैं ऑफिस में काम कर रही होती हूँ तो मैंने देखा है कि मेरे मैनेजर्स काफ़ी मेहनती है, और उन्होंने मुझे ये बताया कि उन्होंने भी अपनी कैरियर की शुरुआत मेरी तरह ही की है, और मुझे आशा है कि कभी मैं मेहनत करके उनके जैसे बन पाऊँ।
वाह वाह, जरूर तुम्हारे सपने पूरे होंगे।
जीनी, कॉल सेंटर में क्या होता है ये तो हमने जान लिया, पर इसके कोर्स में किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है?
ये जानने के लिए क्यों ना हम एक प्रशिक्षण केंद्र चलें, तुम खुद ही जान लेना। नमस्ते सतीश जी।
नमस्ते जीनी।
ये है मेरे दोस्त राहुल और नीलम, क्या आप इन्हें कॉल सेंटर के प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दे सकते हैं?
हाँ हाँ जरूर।
सर, इस कोर्स के दौरान आप किस तरह का प्रशिक्षण देते हैं?
नीलम, हम यहाँ पर तीन तरह का प्रशिक्षण देते हैं। पहले भाषा, भाषा का मतलब है कि आप ग्राहक से कितना संक्षेप में और प्रभावी तरीके से बात कर सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ शिष्टाचार भी सिखाते हैं कि जब आप ग्राहक से और आप स्टाफ में जब बात करते हैं तो आपको किस तरीके से आप एक पेशेवर अंदाज में आपको बात करनी चाहिए। और तीसरा, हम कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते हैं जिसमें आपको बेसिक टाइपिंग और ईमेल से किस तरीके से आपको पत्राचार करना चाहिए। तो यही तीन चीज़ें हैं जिस पर हम आपको ट्रेनिंग देते हैं।
अगर कोई इस कोर्स में दाखिला लेना चाहे तो उसे किस तरह की योग्यता की ज़रूरत है?
राहुल, इसमें न्यूनतम योग्यता 12वीं होनी चाहिए और आपको बुनियादी अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए। और इसमें आपको अच्छा करियर बनाने के लिए आपको कुछ ही गुणों पर या विशेषताओं पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आपका फैसला सकारात्मक होना चाहिए। दूसरा, आपका इस काम के प्रति आपका समर्पण। तीसरा, आपका परिश्रम करने के प्रति सकारात्मक रुख और निरंतरता आपके काम में सुधार। यही कुछ योग्यताएं और गुण हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा।
इस कोर्स की अवधि और इसका शुल्क कितना है?
इस कोर्स की कम से कम अवधि 1 महीने है और अधिक से अधिक 6 महीने है। फीस 2000 से शुरू होती है और 12000 रुपये तक जाती है। और यदि आप सारी फीस एक साथ नहीं दे सकते हैं तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको आपकी क्षमता के हिसाब से किस्तों में फीस देने के लिए भी छूट देता है।
अगर कोई छात्र कॉल सेंटर के क्षेत्र से जुड़ना चाहता हो तो वो कहाँ से शुरू करें?
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपके न्यूनतम योग्यता 12वीं होनी चाहिए। पहले आप 12वीं कर लीजिए, उसके बाद आप कई माध्यमों से आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे आप अखबारों में आए हुए विज्ञापनों के माध्यम से आपको पता लगता है। आपके क्षेत्र में बहुत से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, आप वहाँ पर भी जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपके आसपास कई मित्र ऐसे होते हैं जो कि इसमें कोर्स कर चुके होते हैं, आप उनसे भी इसके बारे में पता कर सकते हैं। और इसके अलावा रोड के किनारे बोर्ड भी लगे होते हैं जिनके द्वारा आप ट्रेनिंग सेंटर में जाकर ट्रेनिंग शुरू करने के लिए आप बात कर सकते हैं।
सर, हमारे इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए शुक्रिया।
मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे इंस्टीट्यूट में आए और मैं आपके एक सफल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
तो नीलम, राहुल, चलो जल्दी से आज सीखी हुई सारी बातें दोहरा दो, मैं भी तो जानूं क्या याद है तुम्हें।
बोलो 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 बोलो, क्या याद है? समझे कितना क्या याद है,
क्या याद है,
क्या याद है।
कॉल सेंटर एक ऐसी जगह है जहां ग्राहक अलग अलग सेवाओं के लिए संपर्क करते हैं।
कॉल सेंटर की दो विधाएं होती है, एक वॉइस यानी आवाज से जुड़ी और दूसरी नॉन वॉइस यानी जहां आवाज का इस्तेमाल नहीं होता, जिसे बैक ऑफिस भी कहा जाता है। वॉइस में ग्राहकों को फोन द्वारा बात करके जानकारी दी जाती है और बैक ऑफिस में ईमेल के जरिए जानकारी दी जाती है।
बैक ऑफिस में और दूसरी अलग तरह की सेवाएं भी दी जाती हैं, जैसे अकाउंट्स में सहयोग या रिकॉर्ड मेंटेनेंस में सहायता इत्यादि।
कॉल सेंटर ट्रेनिंग का कोर्स 1 महीने से 6 महीने का हो सकता है।
इसमें ग्राहकों से बात करने का सलीका, चीजों को फोन पर बेचना और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना भी सिखाया जाता है। इसके अलावा सभी कंपनियां नौकरी के पहले कुछ महीनों में अपने काम से जुड़ा प्रशिक्षण भी देती हैं।
कॉल सेंटर में काम करने के लिए 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई भी जरूरी है।
अगर अंग्रेजी कमजोर है तो पहले किसी क्षेत्रीय कॉल सेंटर में काम करें और साथ साथ अंग्रेजी सुधारने के लिए प्रशिक्षण लें, क्योंकि बड़े कॉल सेंटरों में अच्छी अंग्रेजी होने से ही तरक्की होती है।
वाकई कॉल सेंटर का काम बहुत मजेदार लगता है। अलग अलग लोगों से बात करना, फोन पे चीजें बेचना, कितना मजा आता होगा ना?
तन्वी दीदी का संघर्ष देखकर मुझे बहुत हौसला मिला, वरना पिताजी को एक्टिंग जैसे कोर्स के लिए मनाने को लेकर मैं कितना निराश हो गया था।
तो अब तुमने व्यवसायिक प्रशिक्षण को लेकर क्या फैसला लिया?
मुझे पता है राहुल ने एक्टिंग को ही व्यवसाय के रूप में चुना होगा।
नहीं नीलम, माना कि मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, लेकिन मुझे अपने माता पिता को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी उन्हें मेरी और ज़रूरत होगी, इसलिए मुझे उनके करीब रहना चाहिए। पिताजी को खेती बाड़ी के काम में मदद करनी चाहिए और मुझे लगता है कि मुझे गांव के बारे में भी सोचना चाहिए।
तो फिर तुम किस व्यवसाय के बारे में सोच रहे हो राहुल?
आजकल फल फूल काफी महंगे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं हॉर्टिकल्चर के बारे में प्रशिक्षण लूँ तो मैं नई तकनीकों का इस्तेमाल करके पैदावार बढ़ा भी सकता हूँ और अच्छा कमा भी सकता हूँ। ऐसा करके मैं पिताजी और गाँव वालों दोनों की मदद कर सकता हूँ।
अरे वाह राहुल, जब मामा जी को तुम्हारे इस फैसले के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे।
हाँ, लेकिन कुछ और व्यवसायिक प्रशिक्षण के बारे में जानना अभी बाकी है। राहुल, तुम चाहो तो उन्हें जानने के बाद अपना चुनाव बदल भी सकते हो।
जीनी, राहुल ने तो किसी व्यवसाय का चुनाव कर लिया, मैं तो अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ, समझ नहीं आता कि कौन सा करियर चुनूं।
चिंता मत करो नीलम, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे जैसे और नई बातें पता चलेंगी तुम बेहतर निर्णय ले सकोगी और हाँ, अपने माता पिता को भी खुश कर सकोगी। मगर अब मुझे चलना होगा, कल फिर मिलेंगे।
चलो राहुल, अब बोतल को नदी में डाल दो।
वैसे नीलम, तुमने कौन सा व्यावसायिक प्रशिक्षण चुना है?
वही सोच रही हूँ, जल्दी ही मैं भी जीनी को अपने फैसले के बारे में बता दूंगी।
ये ऑडियो कार्यक्रम .edu प्रोजेक्ट द्वारा तैयार किया गया है। इसका निर्माण यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा अमरीकी जनता के जरिए सहभागी समझौता नंबर 386A00060014800 से संभव हुआ है। इस प्रोग्राम में प्रस्तुत रूपरेखा की जिम्मेदारी एजुकेशन डेवलपमेंट सेंटर की है तथा ये किसी भी प्रकार से USAID या US शासन की विचारधारा को प्रस्तुत नहीं करता है।